आय में वृद्धि और व्यय में कमी यह ज्ञान शंकर के सुप्रबंध का फल था। यद्यपि गायत्री भी सदैव किफायत पर निगाह रखती थी, पर उसकी किफायत अशर्फियों के लूट और कोयलों पर मोहर को चरितार्थ करती थी। ज्ञान शंकर ने सारी व्यवस्थाएं पलट दी। कारिंदों के बेपरवाही से इलाके में जमीन के बड़े बड़े टुकड़े पड़ती पड़े थे। हजारों बीघे की सीर होती थी, पर अनाज का कहीं पता न चलता था। सबका सब सिपाही प्यादों के खुराक में उड़ जाता था। पटवारी की साजिश और कारिंदों के बेईमानी से कितनी ही उर्वर भूमि ऊसर दिखाई जाती थी। शायर की सारी आमदनी राज्य अधिकारियों के आदर सत्कार के लिए भेंट हो जाती थी। नौकर भी जरूरत से ज्यादा पड़े हुए थे। ज्ञान शंकर ने कागज पत्र देखा तो उन्हें बड़ा गोलमाल दिखाई दिया। बहुत दिनों से इजाफा लगान न हुआ था। खेतों की जमाबंदी भी किसी निश्चित नियम के अधीन न थी। हजारों रुपये वार्षिक बट्टे खाते चले जाते थे। बड़े बड़े टुकड़े मौरूसी हो गए थे। ज्ञान शंकर ने इन सभी मामलों की छानबीन शुरू की। सारे इलाके में हलचल मच गई। गायत्री के पास शिकायतें पहुंचने लगी और यद्यपि गायत्री असामियों के साथ नरमी का बर्ताव करना पसंद करती थी, पर जब ज्ञान शंकर ने उसे हिसाब का ब्यौरा समझाया तो उसकी आंखें खुल गई। हजार से ज्यादा ऐसे असामी थे जिन पर तत्काल बेदखली ने दायर की जाती तो वे सदा के लिए जमींदार के काबू से बाहर हो जाते और 20,000 सालाना की क्षति होती। इजाफा लगान से आमदनी सवाई हो जाती थी। इस रियासत से 2,00,000 सालाना भी आयना निकलता था, उससे बिना किसी अड़चन के 3,00,000 की निकासी होती नजर आती थी। ऐसी दशा में गायत्री अपने सुयोग्य मैनेजर से क्यों न सहमत होती। 3 वर्ष तक सारी रियासत में हाहाकार मचा रहा। ज्ञान शंकर को नाना प्रकार के प्रलोभन दिए गए, यहाँ तक कि मार डालने की धमकियां भी दी गई, पर वह अपने कर्मपथ से न हटे। यदि वह चाहते तो इन परिस्थितियों को अपरिमित धन संचय का साधन बना सकते थे, पर सम्मान और अधिकार ने अब उन्हें क्षुद्रताओं से निवृत्त कर दिया था। किंतु जो मनसूबे बांध कर ज्ञान शंकर यहाँ आए थे, वे अभी तक पूरे होते नजर न आते थे। गायत्री उनका लिहाज करती थी, प्रत्येक विषय में उन्हीं की सलाह पर चलती थी, लेकिन इसके साथ ही वह उनसे कुछ खींची रहती थी। उन्हें प्रायः नित्य ही उससे मिलने का अवसर प्राप्त होता था। वह इलाके के दूरवर्ती स्थानों से ही मोटर पर लौट आया करते थे, लेकिन यह मुलाकात कार्य संबंधी होती थी। यहाँ प्रेम तत्व दर्शन का मौका न मिलता, 2-4 लौंडियाँ खड़ी ही रहती, निराश होकर लौट जाती थी। यह आग जो उन्होंने हाथ सेकने के लिए जलाई थी, वह अब उनके हृदय को भी गर्म करने लगी थी। उनकी आंखें गायत्री के दर्शनों की भूखी रहती थी, कान उसका मधुर भाषा सुनने के लिए विकल। यदि किसी दिन मजबूर होकर उन्हें देहात में ठहरना पड़ता था, किसी कारण से गायत्री से भेंट न होती तो वह उस अफीमची की भांति अस्थिर चित्त हो जाते, जिससे समय पर अफीम न मिले। एक दिन गायत्री ने प्रातःकाल ज्ञान शंकर को अंदर बुलाया। आजकल मकान की सफाई और सफेदी हो रही थी। दीप मालिका का उत्सव निकट था। गायत्री बगीचे में बैठी हुई चिड़ियों को दाना चुगा रही थी। कोई लौंडी न थी। ज्ञान शंकर का हृदय चिड़ियों की भांति फुदकने लगा। आज पहली बार उसे ऐसा अवसर मिला। गायत्री ने उन्हें देख कर कहा, आज आपको कोई बहुत जरूरी काम तो नहीं है? मैं आपसे एक खास मसले में कुछ राय लेना चाहती हूँ। ज्ञान शंकर, कुछ हिसाब किताब देखना था, लेकिन अब ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है। गायत्री, मेरे स्वामी ने अंतिम समय मुझे वसीयत की थी कि अपने बाद यह इलाका धर्मार्पण कर देना और इसकी निगरानी और प्रबंध के लिए एक ट्रस्ट बना देना। मेरी अब इच्छा होती है कि इसकी वसीयत पूरी कर दूं। जिंदगी कोई भरोसा नहीं, न जाने कब संदेश आ पहुंचे। कहीं बिना लिखा पड़ी कि यह मर गई तो रियासत का माट बखरा हो जाएगा और वसीयत पाने की रेखा के भांति मिट जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस समस्या को हल कर दें, इससे अच्छा अवसर फिर न मिलेगा। ज्ञान शंकर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी अभिलाषाओं के त्रिभुज का आधार विलुप्त होता जाता था। बोले, वसीयत लेखबद्ध हो गई है। गायत्री, उनकी इच्छा मेरे लिए हजारों लेखों से अधिक मान्य है। यदि उन्हें मेरी फिक्र होती तो अपने जीवन काल में ही रियासत को धर्मार्पण कर जाते। केवल मेरा मान रखने के लिए उन्होंने इस विचार को स्थगित कर दिया। अब उन्हें मेरा इतना लिहाज था कि मैं भी उनकी इच्छा को देववाणी समझती हूँ। ज्ञान शंकर समझ गए कि इस समय कूटनीति से काम लेने की आवश्यकता है। अनुमोदन से विरोध का काम लेना चाहिए। बोले, अवश्य, लेकिन पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस परमार्थ का स्वरूप क्या होगा। गायत्री, आप इस संबंध में लखनऊ जाकर पिताजी से मिलिए। अपने बड़े भाई साहब की भी राय लीजिए। प्रेमशंकर के चचा सुनते ही ज्ञान शंकर के तेवरों पर बल पड़ते गए और उनकी ओर से उनके हृदय में गांठ सी पड़ गई थी। बोले, राय साहब से सम्मति लेनी तो आवश्यक है, वो बुद्धिमान है, लेकिन भाई साहब को मैं कदापि इस योग्य नहीं समझता। जो मनुष्य इतना विचारहीन हो कि अपनी स्त्री को त्याग दे, मिथ्या सिद्धांत प्रेम के घमंड में बिरादरी का अपमान करे और अपनी असाधुता को प्रजाशक्ति का रंग देकर भाई की गर्दन पर छुरी चलाने में संकोच न करे, उससे इस धार्मिक विषय में कुछ पूछना व्यर्थ है। उनकी बदौलत मेरी 1,000 सालाना की हानि हो गई और 3 साल गुजर जाने पर भी गांव में शांति नहीं होने पाई, बल्कि उपद्रव बढ़ता ही चला जाता है। श्रद्धानीय विचारों के कारण उनसे घृणा करती है। गायत्री, मेरी समझ में तो यह श्रद्धा का न्याय है। जिस पुरुष के साथ विवाह किया, उसके साथ निर्वाह करना प्रत्येक कर्मनिष्ठा नारी का धर्म है। ज्ञान, चाहे पुरुष नास्तिक और विधर्मी हो जाए। गायत्री, हाँ, मैं तो ऐसा समझती हूँ। विवाह स्त्री पुरुष के अस्तित्व को संयुक्त कर देता है। उनकी आत्माएं एक दूसरे से में समाविष्ट हो जाती हैं। ज्ञान, पुराने जमाने में लोगों के विचार ऐसे ही रहे हों, पर नया युग इसे नहीं मानता। वह स्त्री को संपूर्णतः स्वाधीन ठहराता है। यह मनसा वाचा कर्मणा किसी के अधीन नहीं है। परमात्मा से आत्मा का जो घनिष्ठ संबंध है, उसने उसके सामने मानवकृत संबंध की कोई हस्ती ही नहीं हो सकती। पश्चिम के देशों से आए दिन धार्मिक मतभेद के कारण तलाक होते रहते हैं। गायत्री, उन देशों की बात न चलाइए। वहाँ के लोग तो विवाह को लेकर सामाजिक संबंध समझते हैं। आपने ही एक बार कहा था कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो विवाह संस्कार को मिथ्या समझते हैं। उनके विचार में स्त्री पुरुषों की अनुमति ही विवाह है, लेकिन भारतवर्ष में कभी इन विचारों का आदर नहीं हुआ। ज्ञान, स्मृतियों में तो इसकी व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है। गायत्री, की गई है, मुझे मालूम है, लेकिन कभी इसका प्रचार नहीं हुआ, और क्यों होता? जबकि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों एक साथ रहकर अपने मतानुसार परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। पुरुष वैष्णव है, स्त्री शैव है। पुरुष आर्य समाज में है, स्त्री अपने पुरातन सनातन धर्म को मानती है। वैश्वर को भी नहीं मानता, स्त्री ईंट और पत्थरों तक की पूजा अर्चना करती है। लेकिन इन भेदों के पीछे पति पत्नी में अलगाव नहीं हो जाता। ईश्वर वह खुदिन यहाँ न लाए जब लोगों में विचार स्वातंत्र का इतना प्रकोप हो जाए। ज्ञान, इसका कारण यह ही है कि हम भीरू प्रकृति हैं, यथार्थ का सामना न करके मिथ्या आदर्श प्रेम की आड़ में अपनी कमजोरी छिपाते हैं। गायत्री, मैंने आपका आशय नहीं समझा। ज्ञान, मेरा आशय केवल यही है कि लोक निंदा के भय से अपने प्रेम या रुचि को छिपाना अपनी आत्मिक स्वाधीनता को खाक में मिलाना है। मैं उस स्त्री को सराहनीय नहीं समझता जो एक दुराचारी पुरुष से केवल इसलिए भक्ति करती है कि वह उसका पति है। वह उसके उस जीवन को जो सार्थक हो सकता है नष्ट कर देती है। यही बात पुरुषों पर भी घटित हो सकती है। हम संसार में रोने और झिझकने के लिए नहीं आए हैं, और न आत्मदमन करके अपने जीवन का ध्येय है। गायत्री, जो आपके कथन का निष्कर्ष यह है कि हम अपनी मनोवृत्तियों का अनुसरण करें, जिस ओर इच्छाएं ले जाएं उस ओर आंखें बंद किए चले जाएं, उनके दमन की चेष्टा न करें। आपने पहले भी एक बार यह विचार प्रकट किया था, तब से मैंने इस पर अच्छी तरह गौर किया है, लेकिन हृदय इसे किसी भांति स्वीकार नहीं करता। इच्छाओं को जीवन का आधार बनाना बालू की दीवार बनाना है। धर्म ग्रंथों में आत्मदमन और संयम की अखंड महिमा कही गई है, बल्कि इसी को मुक्ति का साधन बताया गया है। इच्छाओं और वासनाओं को ही मानव पतन का मुख्य कारण सिद्ध किया गया है, और मेरे विचार में यह निर्विवाद है। ऐसी दशा में पश्चिम वालों का अनुसरण करना नादानी है। प्रथाओं की गुलामी इच्छाओं की गुलामी से श्रेष्ठ है। ज्ञान शंकर को इस कथन में बड़ा आनंद आ रहा था। इससे उन्हें गायत्री के हृदय की अभेद्य और भेद्य स्थलों का पता मिल रहा था, जो आगे चलकर उनकी अभीष्ट सिद्धि में सहायक हो सकता था। वह कुछ उत्तर देना भी चाहते थे कि एक लौंडी ने तार का लिफाफा लाकर उनके सामने रख दिया। ज्ञान शंकर ने चौक कर लिफाफा खोला। लिखा था, जल्द आइए, लखनपुर वालों से फौजदारी होने का भय है। ज्ञान शंकर ने अनमयस्क भाव से लिफाफे को जमीन पर फेंक दिया। गायत्री ने पूछा, घर पर तो सब कुशल है ना? ज्ञान शंकर, लखनपुर से आया है, वहाँ फौजदारी हो गई है। इस गाँव ने मेरी नाक में दम कर दिया है। सब ऐसे दुष्ट हैं, ये किसी तरह काबू में नहीं आते। यह सब भाई साहब की करतूत है। गायत्री, तब तो आपको जाना पड़ेगा, कहीं मामला तूल न पकड़ गया हो। ज्ञान, अब के हमेशा के लिए निपटारा कर दूंगा, या तो गांव से इस्तीफा दे दूंगा, या सारे गांव को ही जला डालूंगा। वे लोग भी क्या याद करेंगे किसी से पाला पड़ा था। गायत्री, लौटते समय माया को जरूर लाइएगा, उसे देखने के लिए बहुत जी चाहता है। विद्या को भी घसीट लाएं तो क्या कहना, मैं तो लिखते लिखते हैरान हो गई। ज्ञान, यह वही प्रथा की गुलामी है जिसका आप बखान करती हैं। बहन के घर जाने का साधारणतः रिवाज नहीं है, वह इसे क्यों कर तोड़ सकती है? कदाचित इसी कारण वह भी यहाँ नहीं आ सकती। गायत्री लजाकर, मैं इन बातों में परवाह नहीं करती, लेकिन यहाँ तो आप देखते हैं सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं। ज्ञान, यही बहाना वह भी कर सकती है। गायत्री, खैर, वह ना आए न सही, लेकिन माया जरूर लाइएगा और वहाँ का समाचार लिखते रहिएगा, अवकाश मिलते ही चले आइएगा। गायत्री का अंतिम वाक्य ऐसा आकांक्षा सूचक था कि ज्ञान शंकर के हृदय में गुदगुदी सी पैदा हो गई। उन्हें यहाँ रहते 3 साल से ऊपर हो गए थे। कितने ही बार बनारस आए, लेकिन गायत्री ने कभी लौटने के लिए ऐसा भावपूर्ण आग्रह न किया था। दिल ने कहा, शायद मेरा जादू कुछ असर करने लगा। बोले, तब भी तो 2 सप्ताह से कम क्या लगेंगे? गायत्री चिंतित स्वर से बोली, 2 सप्ताह? ज्ञान शंकर को अपने विचार की पुष्टि हो गई। 9 बजे वह डाक गाड़ी से रवाना हुए और 5 बजे बनारस पहुंच गए। जिस समय ज्ञान शंकर की अपील खारिज हुई, लखनपुर के लोगों पर विपत्ति की घटा छाई हुई थी। कितने ही घर प्लेग से उजड़ गए, कई घरों में आग लग गई, कई चोरियां हुई, उन पर दैविक घटनाएं अलग हुई। कभी आंधी आती, कभी पानी बरसता। फाल्गुन महीने में एक दिन ओले पड़ गए, सारी खेती नष्ट हो गई। अब गांव वालों के लिए कोई सहारा न था। विशेषकर साध ने भी जमींदार के मुकाबले में सहायता देने से इनकार किया। स्त्रियों के गाने पहले ही निकल चुके थे। अब सुक्कू चौधरी के सिवा और कोई न था जो अपील की पैरवी कर सकता था। लोग भाग्य पर भरोसा किए बैठे थे। बेकसी की दशा में प्रेमशंकर के भेजे हुए रुपये ने बड़ा काम किया। मुर्दे जाग पड़े। कादिर खान इस दिन प्रतिज्ञ होकर उठ खड़ा हुआ और जी तोड़ मुकदमे की पैरवी करने लगा, लेकिन किसानों की नैतिक विजय वास्तविक पराजय से कम न थी। ज्ञान शंकर असामियों को इस दुस्साहस का दंड देने के लिए उधार खाए बैठे थे। अभी गांव के लोग झोपड़ी में ही थे कि गौस खां अपने 3 चपरासियों को लिए हुए आए और झोपड़ों में आग लगवा दी। बाग की भूमि जमींदार की थी, असामियों को वहां झोपड़ी बनवाने का कोई अधिकार न था। चपरासियों में 2 बिल्कुल नए थे, फैज और करतार, दोनों लकड़ी चलाने में कुशल थे, कई बार सजा पाए। उनके हृदय में दया और शील नाम का कोई तत्व न था। पुराने आदमियों में केवल बिंदा महाराज अपनी कुटिल नीति की बदौलत रह गए थे। अभी तक टाउन की ज्वाला शांत न हुई थी कि लोगों को विवश होकर बस्ती में आना पड़ा। इसका फल यह हुआ कि दूसरे दिन ठाकुर जपट सिंह प्लेग के झोंके में आ गए और कल्लू अहिर मरते मरते बच गया। जितनी आरजू मिन्नत की सकती थी सब की गई, लेकिन अत्याचारियों पर कुछ असर न हुआ। जपट के मर जाने पर डपट भी मरने के लिए तैयार हुआ। लट्ठा चलाकर बोला, गौस का जीता ना छोड़ूंगा, अब क्या भय है। लेकिन कादिर खां उसके पैरों पर पड़े और समझा बुझा कर घर लौट आया। लखनपुर में एक बहुत बड़ा तालाब था, गांव भर के पशु इसमें पानी पीते थे, नहाने धोने का काम इसी से चलता था। जून का महीना था, कुओं का पानी पाताल तक चला गया था, आसपास के सब गढ़े और तालाब सूख गए थे, केवल इसी बड़े तालाब में पानी रह गया था। ठीक उसी समय गौस खां ने उस तालाब का पानी रोक दिया। 2 चपरासी किनारे आकर डट गए, पशुओं को मार मार को भगाने लगे। गाँव वालों ने सुना तो चकराए, क्या सचमुच जमींदार तालाब का पानी भी बंद कर देगा? यह तालाब सारे गांव का जीवन स्रोत है। लोगों को कभी स्वप्न में भी अनुमान न हुआ कि जमींदार इतनी जबरदस्ती कर सकता है कि उसका चिरकाल से इस पर अधिकार था। पर आज उन्हें ज्ञात हुआ कि इस जल पर हमारा स्वत्व नहीं है। यह जमींदार की कृपा थी कि वह इतने दिनों तक चुप रहा, किंतु चिरकालीन कृपा भी स्वत्व का रूप धारण कर लेती है। गाँव के लोग तुरंत तालाब के तट पर जमा हो गए और चपरासियों से वाद विवाद करने लगे। कादिर खां ने देखा कि बात बढ़ सकती है तो वह झट से हट जाना उचित समझा। जानते थे कि मेरे पीछे और लोग टल जाएंगे, किंतु तो 2 ही 4 पग चले थे कि सहसा सुक्कू चौधरी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, कहाँ जाते हो कादिर भैया? जब तक यहाँ कोई निपटारा न हो जाए तुम जाने न पाओगे। जब जा भेजा हर एक मामले में इसी तरह दबना है तो गांव के सरगना काहे को बनते हो? कादिर खां, तो क्या कहते हो, लाठी चलाऊँ? सुक्कू, और लाठी है किस दिन के लिए? कादिर खां, किसके बूते पर लाठी चलेगी? गाँव में रह कौन गया है? अल्लाह ने पट्ठों को चुन लिया। सुक्कू, पुठे नहीं ना सही, बूढ़े तो हैं, हम लोगों की जिंदगी किसी रोज काम आएगी। गौस खां को यह मालूम था कि गांव के लोग तालाब के तट पर जमा हैं, तो वह भी लपकते हुए आ पहुंचे और गरज कर बोले, खबरदार कोई तालाब की तरफ कदम न रखें। सुख आगे बढ़ाए और कड़क कर बोले, किसकी मजाल है जो तालाब का पानी रोके? हम और हमारे पुरखा इसी से अपना निस्तार करते चले आते हैं। जमींदार नहीं ब्रह्मा आकर कहें तब भी हम इसे छोड़ेंगे, चाहे इसके पीछे सरबस लुट जाए। गौस खां ने सुक्कू चौधरी को विस्मित नेत्रों से देखा और कहा, चौधरी, क्या इस मौके पर तुम भी दगा दोगे? होश में आओ। सुक्कू, तो क्या आप चाहते कि जमींदार की खातिर अपने हाथ कटवा लूँ, पैरों में कुल्हाड़ी मार लूँ? खैर ख्वाही के पीछे अपना हक नहीं छोड़ सकता। करतार चपरासी ने हंसी करते हुए कहा, अरे तुम का कापरी हो और आगे पीछे 4 दिन में हाथ पसारे चले जाइ हो, ये ताल तुम्हारे संग न जाई। वृद्धजन मृत्यु का व्यंग नहीं सह सकते। सुक्कू ऐंठ कर बोला, क्या ठीक है कि हम ही पहले चले जाएंगे? कौन जाने हमसे पहले तुम ही चले जाओ। जो हो हम तो चले जाएंगे, पर गांव तो हमारे साथ न चला जाएगा। गौस खां, हमारे सलूकों का यही बदला है। सुक्कू, आपने हमारे साथ सलूक किए हैं तो हमने भी आपके साथ सलूक किए हैं, और फिर कोई सलूक के पीछे अपने हक पद को नहीं छोड़ सकता। फैजू, तो फौजदारी करने का अरमान है? सुक्कू, फौजदारी क्यों करें, क्या हाकिम का राज नहीं है? हाँ, जब हाकिम भी न सुनेगा तुम्हारे मन में है वह भी हो जाएगा। यह कहकर सुक्कू ताल के किनारे चले आए और उसी वक्त बैलगाड़ी बैठकर अदालत चली। दूसरे दिन दावा दायर हो गया। लाला मौजीवाल पटवारी की साक्षी पर हार जीत निर्भर थी, उनकी गवाही गाँव वालों के अनुकूल हुई। गौस खां ने उन्हें फोड़ने में कोई कसर न उठा रखी थी, यहाँ तक कि मारपीट की भी धमकी दी, पर मौजीलाल का इकलौता बेटा इसी ताउन में मर चुका था। इसे वह अपने पूर्व संचित पापों का फल समझते थे। सन्मार्ग से विचलित न हुए बेलाख साक्षी दिए। सुक्कू चौधरी की डिग्री हो गई और यद्यपि उसके 2100 रुपये खर्च हुए, पर गाँव में उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर जम गई, धाक बैठ गई, सारा गाँव उनका भक्त हो गया। इस विजय का आनंदोत्सव मनाया गया, सत्यनारायण की कथा हुई, ब्राह्मणों का भोज हुआ, तालाब के चारों ओर पक्के घाट की नींव पड़ गई। गौस खां के भी 700 रुपए खर्च हो गए। ये कांटे उन्होंने ज्ञान शंकर से बिना पूछे ही बोए थे, इसीलिए इसका फल भी उन्हीं को खाना पड़ा। हराम का धन हराम की भेंट हो गया। गौस खां यह चोट खाकर बौखला उठे। सुक्कू चौधरी उनकी आंखों कांटे की तरह खटकने लगा। दया शंकर हल्के से बदल गए थे, उनकी जगह पर नूर आलम नाम के दूसरे महाशय नियुक्त हुए थे। गौस खां ने इनसे राह रस्म पैदा करना शुरू किया। दोनों आसामियों आदमियों में मित्रता हो गई और लखनपुर पर नई नई विपत्तियों का आक्रमण होने लगा। वर्षा का दिन थे, किसानों को ज्वार और बाजरे की रखवाली से दम मारने का अवकाश न मिलता। जिधर देखिए हाँ हूँ की ध्वनि आती थी, कोई ढोल बजाता, कोई टीन की पीपी पीटता। दिन को तोते के झुंड के झुंड टूटते थे, रात को गीदड़ के गोले, उस पर धान की क्यारियों में पौधे बिठाए पड़ते थे। पहर रात रहे ताल में रह जाते और पहर रात गए आते थे। मच्छरों के डंक से लोगों के देह में छाले पड़ जाते थे, किसी के घर गिरता था, किसी खेत में मेड़े कटी जाती थी। जीवन संग्राम की दुहाई मची हुई थी। इसी समय दरोगा नूर आलम ने गांव पर छापा मारा। सुक्कू चौधरी ने कभी कोकीन का सेवन नहीं किया था, उसकी सूरत नहीं देखी थी, उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन उनके घर में एक तोला कोकीन बरामद हुई। फिर क्या था, मुकदमा तैयार हो गया। माल के निकलने की देर थी, हिरासत में आ गए। उन्हें विश्वास हो गया था कि मैं बरी न हो सकूंगा। उन्होंने स्वयं कई आदमियों को इसी भांति सजा दिलाई थी। हिरासत में आने के एक क्षण पहले वह घर में गए और एक हांडी लिए हुआ है। गाँव के सब आदमी जमा थे, उनसे बोले, भाइयों राम राम, अब तुमसे विदा होता है, कौन जाने फिर भेंट हो या ना हो। बूढ़े आदमी की जिंदगानी क्या भरोसा है, ऐसे ही भाग होंगे तो भेंट होगी। इस हांडी में 5,000 रुपये हैं, यह कादिर भाई को सौंपता हूँ, तालाब में घाट बनवा देना। जिन लोगों पर मेरा जो कुछ आता है वह सब छोड़ता हूँ, यह देखो सब कागज पत्र तुम्हारे सामने फाड़ डालता हूँ, मेरे किसी के यहाँ कुछ बाकी नहीं, सब भर गया। दरोगा जी वहीं उपस्थित थे। रुपये को हांडी देखते ही लार टपक पड़ी। सुखू को बुलाकर कान में कहा, कैसे अहमक हो कि इतने रुपये रखकर भी बचने की फिक्र नहीं करते। सुखू, अब बचकर क्या करना है, क्या कोई रोने वाला बैठा है। नूर आलम, तुम इस गुमान में होंगे कि हाकिम को तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आ जाएगी और तुमको बरी कर देगा। अगर इस धोखे में न रहना, वह टपट कर रिपोर्ट लिखूंगा और ऐसी मोहतबीर शहादत पेश करूंगा कोई बैरिस्टर भी जमान न खोल सकेगा। 5,000 नहीं 5 लाख भी खर्च करोगे तो मेरे पंजे से न निकल सकोगे। मैं दयाशंकर नहीं हूँ, मेरा नाम नूर आलम है, चाहो तो एक बार खुदा को भी फंसा दो। सुक्खू ने फिर उदासीन भाव से कहा, आप जो चाहें करें, अब जिंदगी में कौन सा सुख है किसी का ठेंगा सिर पर लूँ। बॉस खां का दया स्रोत उबल पड़ा। हैजू और करतार भी कुलबला उठे और बिंदा महाराज तो हाणी की ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे। तब से अलग अलग और फिर मिलकर सुक्खू को समझाया, लेकिन वटस से मच न हुआ। अंत में लोगों ने कादिर को घेरा। नूर आलम ने उन्हें अलग ले जाकर कहा, खां साहब, इस बूढ़े को जरा समझाओगे, क्यों जाने पर तुला हुआ है, 2 साल से कम की सजा न होगी। अभी मामला मेरे हाथ में, सब कुछ हो सकता है, हाथ से निकल गया तो कुछ न होगा, मुझे इसकी बुढ़ापे पर तरस आती है। कौस खां बोले, हाँ, इस वक्त उस पर रहम करना चाहिए, अब की ताउन ने बेचारे का सत्यानाश कर दिया। कादिर खान जाकर सुक्खू को समझाने लगे, बदनामी का भय दिखाया, हर आवाज की कठिनाई बयान की, किंतु सुक्खू जरा भी न पसीजा। जब कादिर खान ने बहुत आग्रह किया और गाँव को लोग स्वर में समझाने लगे तो सुक्खू उदासीन भाव से बोला, तुम लोग मुझे क्या समझते हो, मैं कोई नादान बालक नहीं हूँ। कादिर खान से मेरी उम्र 2-4 दिन ही कम होगी, जितनी बड़ी जिंदगानी मैंने अपने बंधुओं का बुरा करने में कट गई। मेरे दादा मरे तो घर में भूनी भांग तक न थी। कारिंदों से मिल मिलकर मैं आज गांव का मुखिया बन बैठा हूँ। 4 आदमी मुझे जानते हैं और मेरा आदर करते हैं, और अब आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उन कर्मों का फल कौन भोगेगा, भोगना तो मुझे को है, चाहे यहाँ भोगूँ चाहे नरक में। यह सारी हाँड़ी मेरे पापों से भरी हुई है, इसी ने मेरे कुल का सर्वनाश किया, कोई एक चुल्लू पानी देने वाला न रहा। यह पाप की कमाई पुण्य कार्य में लग जाए तो अच्छा है, घाट बनवा देना, अगर कुछ और लगे तो अपने पास से लगा देना, मैं जीता बच्चा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दूसरे दिन सुक्खू का चालान हुआ। फैजी और करतार ने पुलिस की ओर से साक्षी दी, माल बरामद हो ही गया था, कई 1,000 रुपये का घर से निकलना पुष्टिकारक प्रमाण हो गया, कोई वकील भी न था, पूरे 2 साल की सजा हो गई। नपराध निर्दोष सुक्खू गौस खां के वैमनस और ईर्ष्या का लक्ष्य बन गया। सारा गांव थर्रा उठा। इजाफा लगान के खारिज होने से लोगों ने समझा था कि अब किसी बात की चिंता नहीं थी, मानेश्वर ने अभय प्रदान कर दिया था, अत्याचार के नए हथकंडे देख कर सबके सब के प्राण सूख गए। जब सुक्खू चौधरी जैसा शक्तिशाली मनुष्य दम के दम से तबाह हो गया तो दूसरों का कहना ही क्या, किंतु गौस खां को अभी संतोष न होगा। उनकी यह लालसा थी कि सारा गांव मेरा गुलाम हो जाए, मेरे इशारे पर नाचे, अभी तक पूरी न हुई थी। मौर उसी काश्तकारों में अभी तक कई आदमी बचे हुए थे। कादिर खां अब भी था, बल्लाज और मनोहर अब भी आंखों से खटकते थे। यह सब इस बाग के कांटे थे, इन्हें निकाल लेना बिना सैर करने का आनंद कहा। लखनपुर शहर के 10 ही मील की दूरी पर था। हाकिम लोग आते और जाते, यहाँ जरूर ठहरते। अगहन का महीना लगा ही था, पुलिस के एक बड़े अफसर का लश्कर आ पहुंचा। तहसीलदार स्वयं रसद का प्रबंध करने के लिए आए। चपरासियों की एक फौज साथ थी। लश्कर में 100 सवा 100 आदमी थे। गांव के लोगों ने यह जमकर देखा, समझे कि कुशल नहीं है। मनोहर ने बल्लाज को ससुराल भेज दिया और ससुराल वालों को काला भेजा कि इसे 4-5 दिन न आने देना। लोग अपने अपनी लड़कियां, लकड़ियां और भूसा उठा उठाकर घरों में रखने लगे, लेकिन बोवनी के दिन थे, इतने फुर्सत किसे थी। प्रातःकाल विशेषर साहू दुकान खोली रहे थे कि अर्दली के 10-12 चपरासी दुकान पर आ पहुंचे। विशेषर ने आटे दाल के बोरे खोल दिए जिनसे तौली जाने लगी। दोपहर तक यही ताता लगा रहा। घी के कई कनस्तर खाली हो गए। 3 पड़ाव के लिए जो सामग्री एकत्र की थी अभी समाप्त हो गए। विशेषज्ञ होश उड़ गए। फिर आदमी मंदिर दौड़ाए बेगार की समस्या इसमें कठिन थी। पांच बड़े बड़े घोड़ों के लिए हरी घास छीलना सहज नहीं था। गांव के सब चमार इस काम में लगा दिए गए। कई नोनिये पानी भर रहे थे। चार आदमी नित्य सरकारी डाक लेने के लिए सदर दौड़ाए जाते थे। कहारों को कर्मचारियों की खिदमत से सिर उठाने की फुर्सत न थी। इसीलिए जब 2 बजे साहब ने हुक्म दिया कि मैदान में घास छील कर टेनिस कोर्ट तैयार किया जाए, तो वे लोग भी पकड़ गए जो अब तक अपनी वृद्धावस्था या जाति सम्मान के कारण बचे हुए थे। चपरासियों ने पहले दुखन भगत को पकड़ा। भगत ने चौंक कर कहा, क्यों मुझसे क्या काम है? चपरासी ने कहा, चलो लश्कर में घास छीन ली है। भगत, घास चमार छीलते हैं, हमारा काम नहीं है। इस पर चपरासी ने उनकी गर्दन पकड़कर आगे ढकेला और कहा, चलते हो यहाँ कानून बघारते हो। भगत, अरे तो क्यों, क्या अंधेर है, अभी ठाकुर जी का भोग तक नहीं लगाया। चपरासी, एक दिन ठाकुर जी भूखों न मर जाएंगे। भगत ने बात विवादित चित न समझा, झपट कर सिपाहियों के बीच से निकल गए और भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिए। सिपाहियों ने धड़ाधड़ किवाड़ पीटना शुरू किया। एक सिपाही ने कहा, लगा दे आग, वहीं भुन जाए। दुखर ने भीतर से कहा, बैठो, भोग लगाकर आ रहा हूँ। चपरासियों ने खपड़ैल फोड़ने शुरू किए। इतने में कई चपरासी कादिर खां आदि को साथ लिए आ पहुंचे। लपट सिंह पहर रात घर से गायब हो गए थे। कादिर ने कहा, भगत घर में क्यों घुसे बैठे हो, चलो हम लोग भी चलते हैं। भगत ने द्वार खोला और बाहर निकल आए। कादिर हंसकर बोले, आज हमारी तुम्हारी बाजी है, देखे कौन ज़्यादा घास छीलता है। भगत ने कुछ उत्तर न दिया। सब लश्कर के मैदान में आए और घास छीनने लगे। मनोहर ने कहा, खां साहब के कारण हम भी चमार हो गए। दुखरन, भगवान की इच्छा, जो कभी ने किया आज करना पड़ा। जो कादिर, जमींदार के असामी नहीं हो, खेत नहीं जोतते हो। मनोहर, खेत जोतते हो तो उसका लगान नहीं देते, कोई भक्कुआ एक पैसा भी तो नहीं छोड़ता। कादिर, इन बातों में क्या रखा है, गुड़ खाया है तो कान छिदाने पड़ेंगे, और कुछ और बातचीत करो। कल्लू, अभी तुम ससुराल में बहुत दिन तक रहे, क्या क्या मार लाए? कल्लू, मार लाया या कहो जान लेकर आ गया। यहाँ से चला तो कुल 3.5 रुपये पास थे। 1 रुपये की मिठाई ली, 8 आने रेल का किराया दिया, 2 रुपये पास रख लिए। यहाँ पहुँचते बड़े साले ने अपना लड़का लाकर मेरी गोद में रख दिया। बिना कुछ दिए उसे गोद से कैसे लेता? कमर से 1 रुपया निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। रात के गांव भर की औरतों ने जमा होकर गाली गई। उन्हें भी नेक दस्तूर मिलना ही चाहिए था, 1 ही रुपये की पूंजी थी, वो उनकी भेंट की न देता तो नाम मसाई होती। मैंने समझा, यहाँ रुपये का और काम ही किया, और चलती मेरी कुछ न कुछ विदाई मिल ही जाएगी। 8 दिन चैन से रहा। जब चलने लगा तो सामने एक मटका खांड, एक टोकरी ज्वार की बाल और एक थैली में कुछ खटाई भर दी। पहुँचाने के लिए एक आदमी साथ कर दिया, बस विदाई हो गई। अब बड़ी चिंता, घर पर कैसे पहुंचूंगा, जान न पहचान मांगू किससे? उस आदमी के साथ स्टेशन आया, इतना बोझ लेकर पैदल घर तक आना कठिन था। बहुत सोचते सोचते सूची कि चलकर ज्वार की बाल कहीं बेच दो, 8 आने भी मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा। बाजार में जाकर एक दुकानदार से पूछा, बाल लोगे? उसने दाम पूछा। मेरे मुँह से निकला, दाम तो मैं नहीं जानता, 8 आने दो, ले लो। बढ़िया ने समझा चोरी का माल है। थैला पटका, बाले सब रखवा ली और वहाँ चुपके से चले जाओ, नहीं तो चौकीदार को बुलवा कर थाने भिजवा दूंगा। तो भैया क्या करता, सब कुछ वहीं छोड़कर भागा। दिन भर का भूखा प्यासा पहर गए आया, कान पकड़े किए ससुराल न जाऊंगा। कादिर, तो तुम सस्ते ही छूट गए। एक बेर मैं भी ससुराल गया था, जवानी की उम्र थी, दिन भर धूप में चला तो रौदी हो गई, मगर लाज के मारे किसी से कहा तक नहीं। खाना तैयार हुआ तो साली दलान में बुलाकर भीतर चली गई। दलान में अंधेरा था, मैं उठा तो कुछ सूझा ही नहीं किधर जाऊँ, न किसी को पुकारते बने न पूछते। इधर उधर टटोलने लगा। वहीं एक कोने में मेढ़ा बंधा हुआ था, मैं उसके ऊपर जा गिरा। वह मेरे पैर के नीचे से झपट कर उठा और मुझे ऐसा सींग मारा कि मैं दूर जा गिरा। यह धमाका सुन के वही साली दौड़ी हुई यार अंदर ले गई। आंगन में मेरे ससुर और 2-3 बिरादर बैठे हुए थे, मैं भी जा बैठा, पर सोचता नहीं था कि क्या करूं। सामने खाना रखा हुआ था। इतने में मेरी सास कड़े छड़े पहने छन छन करती हुई दाल के रकाबे में घी डालने आए। मैंने छन छन की आवाज़ सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक घुटने में दर्द हो रहा था, समझा कि शायद मेढ़ा छूट गया। खड़ा होकर लगा पैंतरे बदलने, सास को भी घूंसा लगाया, घी की प्याले उनके हाथ से छूट पड़ी। वह घबरा के भागी। लोगों ने दौड़ कर मुझे पकड़ा और पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? शर्म के मारे मेरी जबान बंद हो गई, कुछ बोली ही न निकली। साला दौड़ा हुआ आया गया और एक मौलवी को लिए वाला आया। मौलवी को देखते ही कहा, इस पर शहीद मर्द सवार है। दुआ ताबीज होने लगी, घर में किसी ने खाना न खाया। सास और ससुर मेरे सिरहाने बैठे बड़ी देर तक रोते रहे और मुझे आवे बार बार हंसी, कितनी ही रोक सकूँ न रुके। मारे मुझे नींद न आई। भोर में उठकर मैंने किसी से कुछ पूछा न ताछा सीधे घर की राह ली। दुखरन, भगत अपने ससुराल के बाद तुम भी कहो। दुखरन, मुझे इस वक्त मस्खरी नहीं सूझती, ये जी चाहता है कि सिर पटक कर मर जाऊँ। मनोहर, कादिर भैया आज बलाज होता तो खून खराबी हो जाती, उससे यह दुर्घटना देखी जाती। कादिर, फिर वही दुखड़ा ले बैठे। अरे जो अल्लाह को यह मंजूर होता है कि हम लोग इज्जत आबरू से रहें तो काश्तकार क्यों बनना था, जमींदार न बनाता, चपरासी न बनाता, थाने का कांस्टेबल न बनाता कि बैठे बैठे दूसरों पर हुक्म चलाया करते। नहीं तो यह हाल है कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर भी जिसे देखो धौंस जमाया करता है। सभी की गुलामी करनी पड़ती है, क्या जमींदार, क्या सरकार, क्या हाकिम, सभी की निगाह हमारे ऊपर टेढ़ी है और शायद अल्लाह भी नाराज है। नहीं तो क्या हम आदमी नहीं हैं कि कोई हमसे बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन रो कर क्या करें, कौन सुनता है, कौन देखता है। खुदा ताला ने आंखें बंद कर ली। जो कोई भला मानुष दर्द बूझ कर हमारे पीछे पड़ा भी हो जाता है तो उस बेचारे की जान भी आफत में फंस जाती है। उसे तंग करने के लिए, फंसाने के लिए तरह तरह के कानून गढ़ लिए जाते हैं। देखते तो हो बल्लाज के अखबार में कैसी कैसी बातें लिखी रहती हैं। यह सब अपनी तकदीर की खूबी है। यह कहते कहते कादिर खां रो पड़े। वह हृदय ताप जिसे वह हास्य और आमोद दबाना चाहते थे प्रज्वलित हो उठा। मनोहर ने देखा तो उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गई, पद्दलित अभिमान की मूर्ति की तरह। चारों ओर में से कोई ने बोला, सबके सबसे झुका चुपचाप घास छीलते रहे। यहां तक कि तीसरा पहर हो गया, सारा मैदान साफ हो गया, सबने खुरफियां रख दी और कमर सीधी करने के लिए जरा लेट गए। बेचारे समझते थे कि गला छूट गया, लेकिन इतने में तहसीलदार ने आकर हुक्म दिया, गोबर लाकर से लीप दो, खूब चिकना कर दो, कोई कंकड़ पत्थर न रहने पाए। कहाँ है नाजर जी, इन सबको डोल और रस्सी दिलवा दीजिए। नाजर ने तुरंत डोल और रस्सी मंगवा कर रख दी। कादिर ने डोल उठाया और कुएं की तरफ चले, लेकिन दुखरन भगत घर का रास्ता लिया। तहसीलदार ने पूछा, उधर कहाँ? दुखरन ने उदंडता से कहा, घर जा रहा हूँ। तहसीलदार, और लिपेगा कौन? दुखरन, जिसे गरज होगी वह लिपेगा। तहसीलदार, इतने जूते पड़ेंगे कि दिमाग की गर्मी उतर जाए। दुखरन, आपका अख्तियार है, जूते मारिए चाहे फांसी दीजिए, लेकिन लीप नहीं सकता। कादिर, भगत तुम कुछ न करना, आओ बैठो ही रहना, तुम्हारा हिस्से का काम मैं कर दूंगा। दुखरन, मैं तो अब जूते खाऊंगा, जो कसर है वह भी पूरी हो जाए। तहसीलदार, इस पर शामत सवार है कोई चपरासी, जरा लगाओ तो बदमाश को 50 जूते, मिजाज ठंडा हो जाए। यह हुक्म पाते कि चपरासी ने लपक कर भगत को इतने जोर से धक्का दिया कि वह जमीन पर गिर पड़े और जूते लगाने लगा। भगत जड़वत भूमि पर पड़े रहे, मानो संज्ञा शून्य हो गए हैं। उनके चेहरे पर क्रोध या ग्लानि का चिन्ह भी न था। उनके मुख से हाय तक निकलती थी। दीनता ने समस्त चैतन्य शक्तियों का हनन कर दिया था। कादिर खां कुएं पर से दौड़े हुए आए और उसने दही चपरासी के सामने सिर झुकाकर बोले, शेख जी, इनके बदले मुझे जितना चाहिए मार लीजिए, अब बहुत हो गया। चपरासी ने धक्का देकर कादिर को धकेल दिया और फिर जूता उठाया कि अकस्मात सामने से एक छक्के पर प्रेमशंकर और टपट सिंह आते दिखाई दिए। प्रेमशंकर यह हृदय विदारक दृश्य देखते ही इक्के से कूद पड़े और दौड़ते हुए चपरासी के पास आकर बोले, खबरदार जो फिर हाथ चलाया। चपरासी सकते में आ गया। कल्लू, मनोहर सब रोल लस्सी छोड़ छाड़ कर दौड़े और उन्हें सलाम कर खड़े हो गए। चमार भी घास लाकर पैसे के इंतजार में खड़े थे, वे भी पास आ गए। ज्ञानशंकर, प्रेमशंकर के चारों ओर जमघट सा हो गया। तहसीलदार ने कठोर स्वर में पूछा, आप कौन हैं? आपको सरकारी काम में मुदाखिलत करने का क्या मजाल है? प्रेमशंकर, मुझे नहीं मालूम था कि गरीबों को जूते लगवाना भी सरकारी काम है। इसने क्या खदा की थी जिसके लिए आपने यह सजा तजवीज की? तहसीलदार, सरकारी हुक्म के तालीम से इनकार किया। इससे कहा गया था कि इस मैदान में गोबर से लीप दे, पर इसने बदजवानी की। प्रेम, आपको मालूम नहीं था कि वह ऊंची जाति का काश्तकार है, जमीन लीपना या कूड़ा फेंकना उसका काम नहीं है। तहसीलदार, जूते की मार सब कुछ करा लेती है। प्रेमशंकर का रक्त खौल उठा, पर जब्त से काम लेकर बोले, आप जैसे जिम्मेदार अहदेदार की जबान से यह बात सुनकर सख्त अफसोस होता है। मनोहर आगे बढ़कर बोला, सरकार आज जैसे दुर्गति हुई वह हम ही जानते हैं। एक चमार बोला, दिन भर घास छीला, अब कोई पैसे भी नहीं देता, घंटों से खड़े चिल्ला रहे हैं। तहसीलदार ने क्रोधन मत होकर कहा, आप यहाँ से चले जाएं, वरना आपके हक में अच्छा ना होगा। नाजर जी, आप मुंह क्या देख रहे हैं? चपरासियों से कहिए इन चमारों को अच्छी खबर दें, यह इनकी मजदूरी है। चपरासियों ने बेगार को घेरना शुरू किया। कांस्टेबलों ने भी बंदूक के कंधे चलाने शुरू किए। कई आदमियों को चोट आ गई। प्रेमशंकर ने जोर से कहा, तहसीलदार साहब, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि चपरासियों को मारपीट करने से मना कर दें, वरना इन गरीबों का खून हो जाएगा। तहसीलदार, आपके इशारों पर इन बदमाशों ने सरकशी अख्तियार की है, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं समझ गया, आप किसी किसान सभा से ताल्लुक रखते हैं। प्रेमशंकर ने देखा तो लखनपुर वालों के चेहरे रोष से विकृत हो रहे थे। प्रतिक्षण शंका होती थी कि इनमें से कोई प्रतिकार न कर बैठे। प्रतिक्षण समस्या जटिलतर होती जाती थी। तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों से मनुष्यता और दयालुता की अब कोई आशा न रही, तुरंत अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। गाँव वालों की ओर रुक करके बोले, तहसीलदार साहब का हुक्म मानो, एक आदमी भी यहाँ से न जाए, सब आदमियों को मुँह मांगी मजूरी दी जाएगी, इसकी कुछ चिंता मत करो। यह शब्द सुनते ही सारे आदमी ठिठक कर और विस्मित होकर प्रेमशंकर की ओर ताकने लगे। सरकारी कर्मचारियों को भी आश्चर्य हुआ। मनोहर और कल्लू कुएं की तरफ चले। चमारों ने गोबर बटोरना शुरू किया। टपट सिंह भी मैदान से ईट पत्थर उठाकर बाहर फेंकने लगे। सारा काम ऐसे शांति से होने लगा मानो कुछ हुआ ही न था। केवल दुखहरण भगत अपनी जगह से नहीं गए। प्रेमशंकर ने तहसीलदार से कहा, आपकी इजाज़त हो तो यह आदमी अपने घर चला जाए, इसे बहुत चोट आ गई है। तहसीलदार ने कुछ सोच के कहा, हाँ जा सकता है। भगत चुपके से उठे और धीरे धीरे घर की ओर चले। इधर आदमियों ने मैदान लीप पोत कर तैयार कर दिया। सब ऐसा दौड़ दौड़ कर उत्साह से काम कर रहे थे मानो उनके घर बारात आई हो। संध्या हो गई थी। प्रेमशंकर जमीन पर बैठे विचारों में मग्न थे। कब तक गरीबों पर यह अन्याय होगा, कब तक उन्हें मनुष्य समझा जाएगा? हमारा शिक्षित समुदाय कब अपने दीन भाइयों की इज्जत करना सीखेगा? कब अपने स्वार्थ के लिए अपने अफसरों के नीचे खुशामद करना छोड़ेगा? इतने में तहसीलदार साहब सामने आकर खड़े हो गए और विनय से बोले, आपको यहाँ तकलीफ हो रही है, मेरे खेमे में तशरीफ़ ले चलिए। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना न था। गरीबों के साथ हमदर्दी देख कर आपकी तारीफ करने को जी चाहता है। आप बड़े खुशनसीब हैं कि खुदा ने आपको ऐसा दर्दमंद दिल अता फरमाया है। हम बदनसीबों की ज़िंदगी तो आप अपने तन परवरिश में ही गुजर जाती है। क्या करूँ, अगर अभी साफ कर दूँ कि बेगार मजदूर नहीं मिलते तो नालायक समझा जाऊँगा। आंखों से देखता हूँ कि मजदूरों को 8 आने रोज़ मिलते हैं, पर इन साहब बहादुर से इतनी मजदूरी मांगूँ तो वह हरगिज़ न देंगे। सरकार ने कायदे बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन ये हुक्काम उनकी परवाह ही नहीं करते। कम से कम 50 के मिट्टी के बर्तन उठे होंगे, लकड़ी भूसा पुआल सैकड़ों मन खर्च हो गए, कौन इनकी कीमत देता है? अगर कायदे पर अमल करने लगो तो एक लम्हे भर रहना दुश्वार हो जाए, और मैं अकेला कर ही क्या सकता हूँ? मेरे और कई भाई भी तो हैं, उनकी शक्तियाँ माप देखें तो दांत तले उंगली दबा लें। खुदा ने जिसके घर में रूखी रोटियाँ भी दी हों, वह अभी यह मुलाजमत न करें। आइए बैठिए, आपको सैकड़ों दास्तानें सुनाऊं, जिनमें तहसीलदारों को कायदे के मुताबिक अमल करने के लिए जहन्नुम में भेज दिया गया है। मेरे ऊपर खुद एक बार गरज हो चुकी है। प्रेमशंकर को तहसीलदार से सहानुभूति हो गई, समझ गए कि यह बेचारे विवश हैं। मन में लज्जित हुई कि मैंने कारण ही इनसे अभिनय की। इनके साथ खेमे में चले गए, वहाँ बहुत देर तक बातें होती रही। तहसीलदार साहब बड़े साधु सज्जन निकले। अधिकार विषय घटनाएं समाप्त हो चुकी थी, अपनी पारिवारिक कठिनाइयों का बयान करने लगे। उनके 3 पुत्र कॉलेज में पढ़ते थे, 2 लड़कियाँ विधवा हो गई थी, 1 विधवा बहन और उनके बच्चों का भार भी सिर पर था। 2 में बड़ी मुश्किल से गुजर होता था, अतः वो जहाँ अवसर और सुविधा देखते थे वहाँ रिश्वत लेने में उजर न था। उन्होंने यह वृत्तांत ऐसे सरल और नम्र भाव से कहा कि प्रेमशंकर का स्नेह सा हो गया। वे उठे तो 8 बज चुके थे। चौपाल की तरफ जाते हुए दुखरन भगत के द्वार पहुँचे तो एक विचित्र दृश्य देखा। गाँव के कितने आदमी जमा थे और भगत उनके बीच में खड़े हाथ में शालिग्राम की मूर्ति लिए उन्मत्तों की तरफ भांति भाँक भाँक कर कह रहे थे, यह शालिग्राम है, अपने भक्तों पर बड़ी दया करते रहे हैं, सदा उनकी रक्षा किया करते हैं। इन्हें मोहन भोग बहुत अच्छा लगता है, कपूर और धूप की महक बहुत अच्छी लगती है। पूछो मैंने इनकी कौन सेवा नहीं की? आप सत्तू खाता था, बच्चे चने पर चेना खाते थे, इन्हें मोहन भोग का भोग लगाता था। इनके लिए जाकर कोसों से फूल और तुलसी दल लाता था। अपने लिए तम्बाकू चाहे न रहे पर इनके लिए कपूर और धूप की फिक्र करता था। इनका भोग लगा के तब दूसरा काम करता था। घर में कोई मरता ही क्यों न रहो, इनकी पूजा अर्चना किए बिना कभी न उठता था। कोई दिन ऐसा न हुआ कि ठाकुर द्वार में जाकर चरणामृत न पिया हो, आरती न ली हो, रामायण का पाठ न किया हो। यह भक्ति और श्रद्धा क्या इसलिए कि मुझ पर जूते पड़े, हक ना हक मारा जाऊं, चमार बनो, धिक्कार मुझ पर जो फिर से ठाकुर का नाम जो इन्हें अपने घर में रखूं और इनकी पूजा करूं। हाँ मुझे धिक्कार है, क्या इन्होंने सच कहा है कि ये अपने भक्तों की बैरी हैं, उनका अपमान कराते हैं, उसकी जड़ खोदते हैं और उनसे प्रसन्न रहते हैं जो इनका अपमान करें। मैं अब तक भूला हुआ था। बोलो मनोहर, क्या कहते हो, इसे कुएं में फेंकूं या घोर पर डाल दूं, जहां इन पर रोज बनो कूड़ा पड़े करे, या राह में फेंक दूं जहां सवेरे सांस तक इन पर लाते पड़ती रहे? मनोहर भैया, तुम जानकार होकर अनजान बनते हो, वह संसार के मालिक हैं, उनके महिमा अपरंपार है। कादिर, कौन जानता है उनकी क्या मर्जी है, बुराई से भलाई करते हैं, इतना मन न छोटा करो। दुखहरन हंसकर, यह सब मन को समझाने का ढकोसला है। कादिर मियाँ, यह पत्थर का ढेला है, मेरा मिट्टी का पिंडा। मैं अब तक भूल में पड़ा हुआ था, समझता था इसकी उपासना करने से मेरे लोक पर लोग दोनों बन जाएंगे। आज आंखों के सामने से वह पर्दा हट गया। यह निरा मिट्टी का ढीला है, यह लो महाराज जाओ, यहाँ तुम्हारा जी चाहे। तुम्हारी यही पूजा है कि 30 साल की भक्ति का तुमने मुझे जो बदला दिया है, मैं भी उसी का तुम्हें बदला देता हूँ। यह कहकर भगत ने शालिग्राम को की प्रतिमा को जोर से एक और फेंक दिया, जाने कहाँ गिरी। फिर दौड़े हुए घर में गए, पूजा की पिटारी लाए और बाहर निकले। मनोहर लपका की पिटारी उनके हाथ से छीन लूँ, लेकिन भगत ने उसे अपनी ओर आते देख कर बड़ी फुर्ती से पिटारी खोली और उसमें हवा में उछाल दी। सारी सामग्रियाँ इधर उधर फैल गईं। 30 वर्ष की धर्मनिष्ठा और आत्मिक श्रद्धा नष्ट हो गई, धार्मिक विश्वास की दीवार हिल गई और ईंटें बिखर गई। कितना हृदय विदारक दृश्य था। प्रेमशंकर का हृदय गदगद हो गया। भगवान, इस असभ्य अशिक्षित और दरिद्र मनुष्य का इतना आत्माभिमान, इसे अपमान ने इतना मर्माहत कर दिया, कौन कहता है गंवारों में यह भावना निर्जीव हो जाती है। कितना दारुण आघात है जिसने भक्त विश्वास तथा आत्मगौरव को नष्ट कर डाला। प्रेमशंकर सब आदमियों के पीछे खड़े थे, किसी ने उन्हें देखा नहीं। वह वहीं से चौपाल चले गए, वहां पलंग बिछा तैयार था। डपट सिंह चौका लगाते थे, कल्लू पानी भरती थी। उन्हें देखते ही गौस कहाँ झुककर आदाम अर्ज बजाया लाया और कुछ सकुचाते हुए बोले, बुजुर्ग तहसीलदार साहब के यहाँ बड़ी देर हो गई। प्रेमशंकर, हाँ इधर उधर की बातें करने लगे, क्यों यहाँ कहार नहीं है क्या, ये लोग क्यों पानी भर रहे हैं, उसे बुलाइए, मुनासिब मजदूरी दी जाएगी। गौस खां, हुजूर कहाँ तो चार घर थे लेकिन सब उजड़ गए, अब एक आदमी भी नहीं। प्रेमशंकर, यह क्यों। गौस खां, अब हुजूर से क्या बताऊँ, हम ही लोगों की शरारत और जुल्म थे, यहाँ हमेशा तीन चार चपरासी रहते हैं, एक एक के लिए एक एक खिदमतगार चाहिए और मेरे लिए तो जितने खिदमतगार उतने ही थोड़े हैं। बेचारे सुबह से पकड़ लिए जाते थे, शाम को छुट्टी मिलती थी, कुछ खाने को पा गए नहीं तो भूखे ही लौट जाते थे। आखिर सब के सब भाग खड़े हुए, कोई कलकत्ता गए, कोई रंगून, अपने बाल बच्चों को भी लेते गए। अब यह हाल है कि अपने यहाँ तो बर्तन तक धोने पड़ते हैं। प्रेमशंकर, आप लोग इन गरीबों को इतना सताते क्यों हैं, अभी तहसीलदार साहब लश्कर वालों की सारी बेइंसाफियों का इल्ज़ाम अपने ही सिर मढ़ रहे थे। गौस खां, हुजूर तो फारिश्ते हैं लेकिन छोटे सरकार का ऐसा ही हुक्म है। आजकल खेतों में बार बार ताकीद करते हैं, गांव में एक भी दखलकार आसामी न रहने पाए। हुजूर का नमक खाता हूं तो हुजूर की हुक्म की तालीम करना मेरा फ़र्ज है, वरना खुदा ताला को क्या मुँह दिखाऊंगा। इसलिए मुझे इन बेकसों पर भी सभी तरह के सख्तियाँ करनी पड़ती हैं, कहीं मुकदमे खड़े कर दिए, कहीं बेगार में फंसा दिया, कहीं आपस में लड़ा दिया। कानून का हुक्म कहे कि आदमियों को लगान देते ही पाई पाई की रसीद दी जाए, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रसीद देता हूँ जो ज़रा चालाक हैं। गंवारों को यूं ही, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को रसीद देता हूँ जो ज़रा चालाक हैं, गंवारों को यूं ही टाल देता हूँ। छोटे सरकार का बकाया पर इतना जोर है कि एक पाई भी बाकी रहे तो नालिश कर दो। कितने आसामी तो नालिशों से तंग आकर निकल भागे, मेरे लिए तो जैसे छोटे सरकार वैसे हुजूर भी हैं। आपसे क्या छिपाऊँ, इस तरह की धांधलियों में हम लोगों का भी गुजर बसर हो जाता है, नहीं तो इस थोड़ी सी आमदनी में गुजर होना मुश्किल था। इतने में विशेषर मनोहर कादिर खां आदि भी आ गए और आज का वृत्तांत कहने लगे। मनोहर दूध लाया, कल्लू ने दही पहुंचाया, सभी प्रेमशंकर के सेवा सत्कार में तत्पर थे। जब वो भोजन करके लौटे लेटे तो लोगों ने आपस में सलाह दी कि बाबू साहब को रामायण सुनाई जाए। विशेषर साहब अपने घर से ढोल मजीरा लाए, कादिर ने ढोल लिया, मजीरे बजने लगे और रामायण का गान होने लगा। प्रेमशंकर की पुरानी हिंदी भाषा का अभ्यास न था और शायद ही कोई चौपाई उनकी समझ में आती थी, पर वह हिंदी हाथियों के विशुद्ध धर्मानुराग पर आनंद उठा रहे थे। किधर निष्कपट सरल हृदय साधु लोग हैं, इतने कष्ट झेलते हैं, इतना अपमान सहते हैं, लेकिन मनोमालिन्य का कहीं नाम नहीं। इस समय सभी आमोद के नशे में चूर हो रहे हैं। रामायण समाप्त हुई तो कल्लू बोला, कादिर चाचा अब तुम्हारी कुछ हो जाए। कादिर ने लजाते हुए कहा, गा तो रहे हो क्या, इतनी जल्दी थक गए। मनोहर, नहीं भैया, अब अपनी कोई अच्छी सी चीज़ सुना दो, बहुत दिन हुए नहीं सुना, फिर न जाने कब बैठक हो। सरकार, ऐसा गायक इधर गांव में नहीं है। कादिर, मेरे गवारू गाने में सरकार को क्या मजा आएगा। प्रेमशंकर, नहीं नहीं मैं तुम्हारा गाना बड़े शौक से सुनूंगा। कादिर, हुजूर गाते क्या हैं, रो लेते हैं, आपका हुक्म कैसे टालें। यह कहकर कादिर खान ने ढोल का स्वर मिलाया और यह भजन गाने लगा। मैं अपने राम को रिझाऊँ, जंगल जाऊं न वृक्षा छोड़ूं, ना कोई डार सताऊं, जात पात में है अविनाशी, वाही में दर्श कराऊं, मैं अपने राम को रिझाऊं, ओखद खाऊं न बूटी लाऊं, ना कोई वैद्य बुलाऊं, पूर्ण वैद्य मिले अविनाशी, ताहे को नवज दिखाऊं, मैं अपने राम को रिझाऊं। कादिर के गले में यद्यपि लोच और माधुर्य न था, पर ताल और स्वर ठीक था। कादिर इस विद्या में चतुर था। प्रेमशंकर भजन सुनकर प्रसन्न हुए, उसका एक एक शब्द भक्ति और उद्गार में डूबा हुआ था। व्यवसायी गानों की निरसता और शुष्कता की जगह अनुराग में भाव रसपूर्ण परिपूर्ण था। गाना समाप्त हुआ तो एक नकल की ठहरी, कल्लू इस कला में निपुण था। कादिर मियाँ राजा बने, कल्लू मंत्री, विशेषर साहब सेठ बन गए, डपट सिंह ने एक चादर ओढ़ ली और रानी बन बैठे। राजकुमार की कमी थी, लोग सोचने लगे कि यह भाग किसे दिया जाए। प्रेमशंकर ने हंसकर कहा, कोई हर्ज न हो तो मुझे राजकुमार बना दो। यह सुनकर सबके सब फूल उठे, नकल शुरू हो गई।